नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1800 खास मेहमान मौजूद रहेंगे। इन मेहमानों में 660 से अधिक वाइब्रेंट विलेज, 400 से अधिक सरपंच शामिल हैं। इन्हें खास तौर पर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इतना ही नहीं, किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 लोगों को भी शामिल किया गया है। लाल किले पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने जिम्मा संभाल लिया है। स्वतंत्रता दिवस पर 1000 कैमरे के अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। समारोह के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो टीम आसमान से पैनी नजर रखेगी। प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए स्निपर्स, विशिष्ट स्वॉट कमांडो और शार्प शूटर तैनात किए जाएंगे। लाल किले के इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर होगी। स्वॉट कमांडो और एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात रहेंगे। एनसीपी में जब से दो फाड़ हुई है, पूरी कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर कैसे पार्टी को एकजुट किया जाए। उसी कड़ी में शनिवार को शरद पवार और अजीत के बीच में एक अहम मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद से चर्चा तेज हो गई है कि एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। अब इस सीक्रेट मुलाकात पर खुद एनसीपी प्रमुख ने सामने आकर सच्चाई बता दी है। शरद पवार ने कहा है कि जो मुलाकात हुई वो पूरी तरह पारिवारिक थी, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इससे इतर एनसीपी प्रमुख ने एक बड़ा बयान देने का भी काम किया। उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ शुभचिंतक उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाने वाले। अब ये बयान मायने रखता है क्योंकि अजीत पवार एक बार नहीं कई मौकों पर सियासी खेल करने के बाद शरद पवार को मनाने की कोशिश में लगे हैं। उनकी तरफ से अजीत का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन निशाना वही माना जा रहा है। देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर घाटी में बाइक रैली निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो गई है। उस तस्वीर में आतंकी का भाई भारत का तिरंगा फहरा रहा है। वो आज़ादी का जश्न मनाता दिख रहा है। असल में उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू ने यह तिरंगा फहराया है। बड़ी बात यह है कि जावेद मट्टू पिछले 11 सालों से पाकिस्तान में है। वो वहाँ पर एक आतंकी के रूप में ही सक्रिय है और कई बड़ी घटनाओं के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। लेकिन जब उसके भाई ने भारत का तिरंगा जो फहराया, उसने सभी का ध्यान खींच लिया है। आईआईटी दिल्ली ने अपनी मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया है और विद्यार्थियों में तनाव कम करने के लिए मध्य सेमेस्टर परीक्षाओं का एक सेट हटा दिया है। ये निर्णय कई आईआईटी में विद्यार्थियों की आत्महत्या के कई मामलों के सामने आने के बाद लिया गया है। इन आत्महत्याओं के बाद इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि क्या पाठ्यक्रम और स्टडी का कठिन प्रोसेस विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंगन बैनर्जी ने कहा, पहले हम एक सेमेस्टर की परीक्षाओं में दो सेट का इस्तेमाल करते रहे हैं। हर सेमेस्टर के आखिर में अंतिम परीक्षा और कई मूल्यांकन होते हैं। हमने एक इंटरनल असेसमेंट किया और सभी विद्यार्थियों तथा विभागों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर हमने परीक्षाओं के एक सेट को छोड़ने का फैसला किया है। इसीलिए अब नियमित मूल्यांकन के अलावा परीक्षाओं के दो सेट होंगे। हरियाणा के नूह में एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। ये शोभा यात्रा असल में पहली वाली शोभा यात्रा का ही हिस्सा है। महापंचायत ने पलवल में हुई बैठक में ये फैसला लिया है। असल में धार्मिक संगठनों ने ही मांग की थी कि अधूरी रह गई शोभा यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए। उस वजह से अब 28 अगस्त को फिर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अब नूह में बस शोभा यात्रा निकालने की बात नहीं है, महापंचायत ने सरकार के सामने कई मांगें भी रख दी हैं। उन मांगों में हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। इसके अलावा जोर देकर कहा गया है कि इलाके में जो भी अवैध रूप से रह रहा है, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दिल्ली वासियों को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज यानी 14 अगस्त को भी हल्की बारिश की उम्मीद है। शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद एक बार फिर आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन के कंडाघाट उपमंडल के जादौन गाँव में बादल फटने की घटना के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। शिमला, मंडी, सिरमौर सहित अन्य जिलों में हालात बेहद ख़राब हैं। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।